ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। आकुतिम रुचये प्रादा अपि भात्रुमति नृपः। आकुतिम रुचये प्रादा अपि भात्रुमति नृपः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए। आकुति के दो भाई थे, तो भी राजा स्वयंभुभु मनु ने इससे प्रजा रुचि को इस शर्त पर ब्याह थी, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने उसने अपनी पत्नी सत्यरूपा के परामर्श से ऐसे किया था। हरे कृष्णा। तो ये चौथा स्कंद की प्रारंभ है। मनु वंश की पुत्रियों का वर्णन है। पहला स्कंद, पहला जो तीसरी स्कंद में मनु महाराज की जो तीन पुत्रियों में से देवहूति की कन्या और उनकी वंशावली के वर्णन है। अब ये जो चौथा स्कंद है इसको विसर्ग कहा जाता है। जो श्रीमद् भागवतम के जो 10 प्रसंग हैं, अतः सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषण उतय मनोन्तर ईशानो कथा निरुद्धम मुक्ति आश्रय दशमस्य विशुद्धार्थम नवानम इह लक्षणम। जो 10 प्रसंग है, 10 प्रसंग में से सर्ग से लेकर के उतय मन्वंतर ईशानुकथा निरुद्धम मुक्ति, तो इन मुक्ति तक, स्वर्ग से मुक्ति तक ये केवल लक्षण है। किसका लक्षण है? आश्रय के लक्षण है। तो ये दशम वस्तु जो है आश्रय, इसको समझने के लिए ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत का अर्थ है जो दृष्टि को बढ़ाए। तो विसर्ग और सर्ग, ये चौथा स्कंद जो है ये विसर्ग है। भूत मात्रेन्द्रिया धिया सर्गम इति उदाहृतः। सर्ग का मतलब है जो भूत है, पंच महाभूत, और इसके साथ इंद्रियां, उसकी तन्मात्राएं विषय और अहंकार। जब तीन गुण के द्वारा ये सारे विषय मिलता है और ब्रह्मणा गुण वैषम्यात्, ब्रह्मणा भगवतः भगवान से जब इस गुण का मिलावट होता है, विसर्गम पौरुषम स्मृतः, तो विराट पुरुष इस जगत की अभिव्यक्ति करते हैं। वा वैराज्यत, दो अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा वा भगवान के विराट रूप के द्वारा जो मूल सृष्टि को व्यक्त होता है, अर्थात जो इनग्रेडिएंट है, ये 23 तत्व, इसको मिला करके उसमें जो चेतना प्रवेश करता है और उस चेतना के फल स्वरूप तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो जीवात्मा को अलग अलग प्रकार की शरीर प्रदान की जाती है उसको कहते हैं विसर्ग। इसलिए जो विसर्ग को और स्पष्ट समझने के लिए कैसे चौथा स्कंद में विसर्ग की प्रसंग उल्लेखित है कि गुण क्या है ना, जो परिणाम में प्राप्त होता है इसको कहते हैं गुण वैषम्यात्। जैसे तीन गुण है सत्व रज और तम, तब इसकी जब मिलावट होता है तो तीन गुण के साथ फिर तीन गुण को मिला देने से कितना होता है न, फिर न के साथ नौ को मिला दीजिए तो कितना होगा 81, और फिर जो मूल तीन गुण है तो हुआ 84। तो इसी प्रकार जो 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं ये गुण की वैषम्यता से व गुण की मिलावट से ये सब बना हुआ है। कहते हैं गुणानंग वैषम्यात् परिणामात् ब्राह्मण परमेश्वरात् इति कारणम सृष्टि। तो सृष्टि की ये कारण नहीं है केवल गुण की द्वारा इस भूत प्रकृति को मिला देना, ये सृष्टि के कारण नहीं है। कारण क्या है, ब्रह्मणा चोदितम स इक्षत। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये सृष्टि की सर्जना होती है। मयाध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। चर और अचर ये दो प्रकार की जो सृष्टि है, कुछ चलने वाला कुछ स्थावर, ये भगवान की दृष्टि मात्र से ही ये सृष्टि होता है। तो इसके निमित्त कारण दोनों बनते हैं, ब्रह्मा जी और दुर्गा देवी, क्योंकि सृष्टि की जो मूल कारण स्वरूप भगवान अपनी प्रकृति रूपा माया देवी के ऊपर इच्छण करते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मणा चोदिता इति सृष्टि पारमेश्वरी कर्म सृष्टि। जीवों को क्यों ऐसे भौतिक शरीर दिया जाता है, क्योंकि उनके मन में पहले से कर्म वासना है, तो उस कर्मों को पूर्ति करने के लिए, वासना को पूर्ति करने के लिए भगवान इस भौतिक शरीर को प्रदान करते हैं। गता गतः कामा कामा लभन्ते। तो हर जीव के अंदर जो वासना रूपी जो इच्छा रह जाता है इसको फिर पूर्ति करने के लिए हमको फिर भौतिक शरीर को प्राप्त करना पड़ता है। कर्तृम भूतादिनाम जब विराट पेण स्वरूपतः जन्म। तो जो कर्म है किसको कहते कर्म नहीं किसको कहते शरीर, शरीर किसको कहते हैं, हाँ जो कर्म से बनता है। तो कर्म की डेफिनेशन क्या है, कर्म की क्या डेफिनेशन है, इच्छा से उद्देश्य रख करके किया जाता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान इसके उत्तर देते हैं 8वां अध्याय में, जब अर्जुन ने प्रश्न किया था किंग तद ब्रह्म किंग अध्यात्म किंग कर्म पुरुषोत्तम आदि भूतं च किंग प्रोक्तं आदि यज्ञं किमुच्यते आदि यज्ञं कथं कुत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयसि नियतात्मभिः। भगवान कहते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव मध्यात्म उच्यते भूत भाव भवत्करम विसर्ग कर्म संगीता। भूत भाव उद्भव करम, जो ये भूत प्रकृति को उद्भव करता है, दूसरे लोग भी समझ जाइए, सब साइलेंट मोड पर रख दीजिए। जो भूत प्रकृति को उत्पन्न करे इसको भगवान कहते ये कर्म है। भूत भाव उद्भव कर, जो जीवों की जो जो भावना है उसको साकार रूप देने के लिए जो आवश्यक है उसको कहते कर्म। विसर्गम कर्म संगीत, अर्थात ये जो विसर्ग की चर्चा हो रही है ये क्या है ना, जीवों की जो इच्छा है इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ऐसे प्रकार के शरीर के निर्माण करते हैं, वह विराट पुरुष के द्वारा ये सारे शरीर के निर्माण होता है, जिसके द्वारा जीव उस इच्छा को पूर्ति करे। किस प्रकार? कर्तृ अभिमानित्वात्, कि मैं कर रहा हूं। कर्ता भाव आने मात्र से ही जीव की भोक्ता भाव भी आता है, मैं भोग करूं। इसको कहते हैं विसर्गम। पुरुष वैराज्यं तत्कृत पौरसम चरा अचर सर्ग विसर्ग इति अर्थ। और एक दूसरे अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं, ब्रह्म मनु आदि कृत विसर्ग तो ईश्वर अधीन ही ब्रह्म और मनु, ब्रह्म और मनु ईश्वर की अधीनता में व भगवान की प्रेरणा से डायरेक्शन में ब्रह्मा और मनु इन्होंने जो सृष्टि को रचना करते हैं इसको कहते हैं विसर्ग। तो ये विसर्ग के क्या विषय है जो विस्तारित होता है, कहते हैं हम दो और हमारे दो, अर्थात ये नहीं है संज्ञा नहीं है, अनेक भी हो सकता है, क्योंकि एक अपि बहुश्याम, भगवान एक होते हुए भी उन्होंने सृष्टि को विभिन्न रूप में रचना करने के लिए चाहा कि। तो इसलिए ये जो चौथा स्कंध है जिसमें मुख्यतः चार प्रसंग हैं, जो पहला अध्याय है ये है कि मनुवंशावली की वर्णन है, और दूसरा अध्याय से लेकर के सातवां अध्याय तक शिव और दक्ष की बीच में संग्राम व वाद विवाद वो प्रसंग है, ससुर और दामाद की विषय में है, और आठवां अध्याय से लेकर के तेरहवां अध्याय तक ध्रुव महाराज की प्रसंग है, और चौदहवां अध्याय से लेकर के तेईसवां अध्याय तक पृथ्वी महाराज की प्रसंग है, और छब्बीस से लेकर के इकतीस अध्याय तक वो है पुरंजन व प्रचेतसाओं की कथा। तो मुख्य ये चार स्कंद में ये चार प्रसंग हैं। तो यहां पर चर्चा के ये विषय है कि पहले मैत्र मुनि ये कथा को विदुर जी को सुना रहे हैं, कहां पर? गंगा तट पर। उन्होंने तीसरा स्कंद की जब समाप्त हुई कपिल और देवहूति उपाख्यान, तो यहां पर मैत्र मुनि से विदुर जी ने जिज्ञासा किए थे कि आप मनु के और दूसरी पुत्री को तो वर्णन नहीं किए, क्योंकि आप कहे थे कि उनके एक दूसरी पुत्री से भगवान के एक दूसरे अवतार हुआ था, कौन? यज्ञ भगवान। तो उनकी प्रसंग सुनाइए। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से तीन कन्या हुई, मनुस्तु शतरूपायं खोद सॉरी मैं भी ध्यान नहीं दिया, ऐसे उपदेश देने वाले भी होते हैं लेकिन खुद आचरण नहीं करते, क्षमा कीजिए। कि मनु और शत्रुपा से तीन कन्या हुई, त्रिशा कन्या से जगीरे आकुति देवहूति प्रसूति च इति विश्रुता, आकुति देवहूति और प्रसूति। तो च शब्द से कहते हैं च, ये च शब्द तीन कन्या के लिए नहीं लेना चाहिए, और च शब्द को श्रीधर स्वामी कहते हैं उनकी पुत्र भी थे, तीन कन्या के साथ साथ दो पुत्र थे, कौन कौन? और उत्तानपाद। तो फिर आगे कहते हैं, मैं तो देवहूति के प्रसंग कह चुका हूं, अभी आकुति के विषय में सुनिए। आकुत है रुचय प्रदात अपि भातृमति नृप पुत्रिकाम धर्म आश्रित्य सतरूपानुमोदितः। कहते हे नृप भातृमति अपि, भाई होने पर भी, दो दो भाई होने पर भी उन्होंने पुत्री का धर्म आश्रित्य, पुत्री का धर्म को उन्होंने आश्रय ग्रहण करके, कौन आश्रय ग्रहण किए, मनु महाराज, और किसके द्वारा, सत्तरूपानुमोदिता, उनकी पत्नी सत्तरूपा के द्वारा भी वो रेकमेंडेड है, हाँ ये पुत्री का धर्म को आप आश्रय करके क्या करो ना, आकुतिम रुचये प्रदात, आप आकुति को रुचि प्रजापति को दे दीजिए। ऐसे तो होता है, मैरिज तो सबके साथ होता है, जैसे लड़की के साथ लड़का का विवाह होती है, ब्याह होती है, लेकिन यहां का अपि भातृमति और पुत्री का धर्म, ऐसे वैवाहिक धर्म होना चाहिए कि विवाह करने के लिए वैवाहिक धर्म होना चाहिए, कहते नहीं, वो पुत्री का धर्म को आश्रय ग्रहण किए और फिर यहां पर अपि शब्द लगा गया है कि भातृमति अपि, उनकी भाई होने पर भी। रहस्य क्या है कि जो पुत्री का धर्म होता है पुत्र प्राप्त करने के लिए, जिसका भाई नहीं है अर्थात जिसकी पुत्र नहीं है, उसकी कन्या को जिसके साथ विवाह की जाती है उसके पुत्र को अर्थात पोता को व नाती को पुत्र रूप में एडॉप्ट करना, इसको कहते हैं पुत्री का धर्म। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पुत्री का धर्म क्या है, कहते पुत्री का धर्म आश्रिता, कहते अभातृकाम प्रदस्यामि तुभ्यम कन्याम अलंकृताम अस्यं जो जायते पुत्रः स मे पुत्र भवेत इति। कहते जिसकी भाई नहीं है वो कहेगा देखो इनकी कोई भाई नहीं है, जो पिता व माता अपने कन्या को प्रदान करेंगे तो उनका क्या होगा संधि, उनकी लड़का का पिता माता को कहेंगे देखो इनकी भाई नहीं है अभातृकाम, लेकिन मैं उनको मेरी कन्या को आपके पुत्र के साथ मैं विवाह कराऊंगा, प्रदस्यामि तुभ्यम कन्याम, ये कन्या को मैं आपके पुत्र के साथ विवाह कराऊंगा, व यदि उनके पिता माता नहीं होता है उस दामाद से कहते हैं कि मैं इस कन्या को आपको दूंगा, लेकिन किसका किस बात पर, अलंकृतम अस्याम जो जायते पुत्र, इससे जो पुत्र होगा सामे पुत्र भवेत इति, अर्थात उसकी नाना ने इसको पुत्र रूप में ग्रहण करेगा, जो पहला होगा पुत्र, यदि पहला लड़की है तो नहीं लेगा, जब लड़का होगा तब फिर इसको लेके जाएंगे। भवेत इति भाषा बंधने कन्यादान पुत्रिका धर्म पुत्र बाहुल्यम, कहते ये मनु महाराज वेद की ज्ञानता है परंतु ऐसा क्यों किए, क्योंकि उनका ऑलरेडी दो पुत्र हैं, फिर भी उन्होंने पुत्री का धर्म को क्यों आश्रय ग्रहण किए, ये तो वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपने पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को देता है कि उसे नाती लौटा दे, मतलब पोता, जिससे वो पुत्र रूप में ग्रहण करके अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे, कि पुत्र नहीं तो फिर ये अपने जो धन संपत्ति है खास करके राजाओं का, अब बड़े बड़े धनी घर में भी ऐसा होता है, अभी तक भी प्रचलित है गांव में, कि उनकी उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पोता को लाते हैं, एडॉप्टेड सन कहते हैं पुष्य पुत्र, तो यह पुत्री का धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी पत्नी के साथ कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठान द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है, किंतु यहां पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं, अपने दो पुत्रों की होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वो उन्हें पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। इस प्रसंग में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य लोक ने कि बड़े बड़े लोग की जब कर्म की कुछ व्यतिक्रम होता है, धर्म मर्यादा का कुछ उल्लंघन होता है, उस रहस्य को बतलाते हैं क्यों ऐसा किए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञान था कि आकुति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने दो पुत्र होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे। प्रसिद्ध हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद ने दो टीका प्रस्तुत किए हैं इसमें, और इसका जो शब्दार्थ है श्रीधर स्वामी की, तो तीन आचार्यों को टीका को कैसे श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं, पूर्वोक्त कर्दम उपाख्यान संगी मन कन्यायम देवभूतिम अनुकन्या पुनस्तः पुत्रिका धर्म। भगवान आविर्भविष्यति ही इति ज्ञान्त्वा मनु आकुतिम। मनु और आकुति ये जानते थे कि ये मेरी कन्या से भगवान की अवतार, कौन से अवतार हैं, यज्ञ अवतार, जो समस्त हवि की भोक्ता होंगे, इसलिए हमारे क्या प्रसिद्धि मिलेगा, क्या प्रसिद्धि मिलेगा, नहीं भगवान के पिता कैसे बनेंगे, क्योंकि उनके पुत्र हो गए ना रुचि, कि भगवान हमारे नाती बने, है ना, पुत्र में भी क्या आनंद होता है लेकिन नाती से अधिक वात्सल्य होता है कि नहीं। पिता माता कभी कभी पुत्र को डांटते हैं उनको आदत को सुधारने के लिए, लेकिन नाना नानी बा दादा दादी जो होते हैं उनकी बहुत वात्सल्यता रहता है। इसलिए मनु सतरूप ने सोचे कि हम भगवान की जो नाती की प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए अधिक वात्सल्यता, इसलिए इसी कारण से जो बड़े बड़े महाजन लोग होते हैं वो धर्म की मर्यादा को तोड़ सकते हैं, सत्य को भी भंग कर सकते हैं। जैसे वसुदेव ने, उन्होंने कंस के सामने प्रमिस किए, उन्होंने जब देवहूति को न सॉरी देवकी को अपने बहन को बद्ध करने के लिए तैयार हो गया, तो वसुदेव ने सोचे कि साम दाम दंड भेद सब नीति को मैं अपना लिया, अभी सिर्फ कंस को समझाने के लिए और मेरी पत्नी को इस परिस्थिति से बचाने के लिए एक उपाय ये है, क्या है कि अभी मैं इनको वचन दे देता हूं जिससे उनकी भय उत्पन्न हुआ है। तो तुरंत वसुदेव ने कहा कि देखो तुम भोज वंश की श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुम्हारे कितने जस फैला हुआ है, भोजानम जसस्करम, लेकिन था ही भोज वंश के एक नंबर की कलंक व्यक्ति, लेकिन वसुदेव ने कैसे उनको प्रसाद किया, हाँ दुष्ट व्यक्ति को थोड़ा प्रशंसा कर दो उनकी मन पलट जाता है। तो वसुदेव ने ये ट्रिक किए, कहा कि पुत्रान समर्पयिष्यामि जत्रस्ते उत्थितं भयम्, लेकिन ये व्याकरण को थोड़ी पड़ता है कंस, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए थोड़ी गया था कोई टोल में बा कोई संस्कृत विद्यालय में, तो इतना ही उनको ऊपर ऊपर से समझ में आ गया कि पुत्रान समर्पयिष्यामि, मैं सारे पुत्रों को दे दूंगा परंतु वो पुत्र को नहीं दूंगा जिससे तुम्हारी भय उत्पन्न हुआ है, उसको कभी किसी भी हालत पर नहीं दूंगा, परंतु कंस जिस प्रकार समझा था तो कहा कि वसुदेव ने तो पूरा सत्य प्रतिज्ञा है कि जो महात्मा होते हैं उनकी जबान में कुछ बल रहता है, शक्ति रहता है, वो कभी तोड़ते नहीं है। और महात्मा लोग के एक विशेष प्रभाव होता है, जो वचन बोलते हैं ना, दृष्टम अपि धीरा अधीरम, धीरा धीरा जनप्रिय, अधीर व्यक्ति को भी वशीभूत कर देते हैं। तो कंस जैसे दृष्ट व्यक्ति को भी वसुदेव की वचन वो वशीभूत कर दिया। उन्होंने ये समझ लिया कि वसुदेव ने अपने वचन को रखेगा, उनका प्रतिज्ञा अटल है। लेकिन इनको थोड़ी पता था कि ये ऐसे बोल दिया है कि उस पुत्र को तो कभी नहीं देगा हाथ में, इसलिए रातारात लेकर के उन्होंने गोकुल में पहुंचा दिया मथुरा से। तो इसे धर्म व्यतिकरण, भगवान भी धर्म व्यतिकरण करते हैं। परीक्षित महाराज पूछे कि देखो ये परस्त्री विमर्शनम, दूसरे स्त्रियों के साथ इस प्रकार व्यवहार करना, ये तो धर्म के विरुद्ध है। ये भी साधारण जो धर्म मर्यादा में रहते भी ये भी ऐसे नहीं करेंगे, दूसरे परस्त्री को अपहरण करके ले लेना। लेकिन भगवान होते हुए भी उन्होंने दूसरे स्त्रियों के साथ ऐसे गलत व्यवहार किए, और जो कि धर्म के सेतु बनाने के लिए, धर्म के स्तंभ बनाने के लिए ये प्रकट हुए हैं संसार में, उन्होंने कैसे धर्म को व्यतिक्रम किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप परीक्षित, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए इस प्रकार भगवान की लीला के विषय में प्रश्न करना उचित नहीं है। परंतु परीक्षित महाराज अपने लिए प्रश्न नहीं किए थे, उन्होंने देखे कुछ लोगों हैं, हाँ, ज्ञानी हैं, कर्म मीमांसक हैं, तो उनके मन में इसी प्रकार से वो भावना उत्पन्न हुई थी। तो भगवान कैसे पर स्त्रियों के साथ ऐसे गलत व्यवहार किया, आजकल भी लोग ऐसे कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तेजी अंशम, जो बड़े बड़े आम महापुरुष होते हैं, जैसे कि अग्नि, सूर्य के उदाहरण देते हैं कि वो भी कूड़ा कचड़ा को अग्नि जला देता है, परंतु वो उस कूड़ा कचड़ा से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उसको वो शुद्ध कर देता है। और फिर दूसरे लॉजिक दिए कि जो भगवान आप जो कह रहे हैं कि परस्त्री को वो किए कि उन्होंने तो हार जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में अवस्थित हैं, वो गतिर भर्ता प्रभु साखी सब प्रकार से। तो फिर उन्होंने कैसे भोग किए, वो तो आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम है पुरुष। जो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं वो पुरुष है। इसलिए ये रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकता है। भक्त्या मांग अभिजानाति, भक्त के व्यवहार को भी भक्त समझ सकता है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा बुझे, बड़े बड़े विद्वान शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी उनकी बुद्धि चकरा जाता है, ये कैसे महात्मा होकर के कैसे इसे कार्य कर दिया। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि राजा मनु को ज्ञान था कि आकुति की गर्भ से पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम जन्म ग्रहण करेंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म ग्रहण करेंगे, अतः अपने दो पुत्र होते हुए भी वह आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माण है, और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, एक प्रकार पुत्र भी हैं और नाती भी हैं, क्योंकि प्रजापति रुचि की गर्भा और उनकी पुत्र की गर्भा से जन्म लेने के कारण तो क्या हुए, नाती बने, और जब फिर इसको एडॉप्ट करके लाए तो क्या बने, पुत्र बने। तो दो प्रकार की सुख प्राप्त करने के लिए, पुत्र सुख और नाती के सुख। तो सतरूपा और मनि ने इस धर्म को क्या किए, पुत्री का धर्म को आश्रय करके। लेकिन ये धर्म नहीं है, पुत्र होने पर भी ऐसे पुत्री का धर्म को अपनाना नहीं चाहिए। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बाहुल्यम, पुत्र बाहुल्यम एक बहाना था कि मुझे चाहिए पुत्र को, लेकिन इसके पीछे यही रहस्य था। तो प्रभुपाद कहते हैं श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता हैं, और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति को भी इस प्रणाली को स्वीकार कर सकते हैं। कौन सा धर्म? पुत्री का धर्म। इसका अर्थ क्या है? हाँ, नाती को अपना सकते हैं, परंतु पुत्र ना हो। परंतु ये जो मनोजो किए, तो इस प्रकार रास्ता को नहीं फॉलो करना है, अर्थात यदि फॉलो करना है तो इस प्रकार इच्छा रख कर कि भगवान को हम पुत्र रूप में प्राप्त करें। ऐसे बड़े बड़े जो तेजियंस पुरुष होते हैं, महानुभवी होते हैं, वो धर्म को तोड़ने से कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। कि चंद्रमा जैसे देवता, वो यदि अपने गुरु पत्नी को अपहरण किए, परंतु उनको दोष नहीं लगा, उसकी सोमो वंश प्रकट हुआ, हम लोग अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए हम धर्म को, हमको अनुसरण करना चाहिए जो मर्यादा है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपने पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो इस शर्त के साथ अपनी कन्या को दान कर सकता है। जीव गोस्वामी पाद का ये टीका है क्रम संदर्भ में। क्योंकि प्रजापतियों की यही उद्देश्य रहता है कि कैसे प्रजाओं की सृष्टि किया जाए। इसलिए मनु क्या करते हैं, जो मनवंतर हैं, दसम विषय है मनवंतर तो ईशानुकथा। तो मनवंतर का डेफिनेशन क्या है? कहते मनवंतर तु सद्धर्मा स्थिति वैकुंठ विजय। जो स्थान कहते हैं वो वैकुंठ भगवान की उत्कर्षता है, और जो मनवंतर की जो वर्णन हुई है जिसमें सब भगवान के अवतार आते हैं, तो मनवंतर का ये अर्थ है कि जो मनु अपने मनुष्य जातियों को, अपने दायाद को जो धर्म की शिक्षा देते हैं, तो वो है मनवंतर। तो ये स्वयंभव मनु पहला मनु, तो उन्होंने ये धर्म को स्थापित किए। ये कौन सी धर्म है? ये पुत्री का धर्म नहीं है, बा ये स्वधर्म नहीं है, ये कौन सी धर्म है? भगवत धर्म, बा इसको कहते परोधर्म। भगवान अर्जुन को सिखाए कि स्वधर्म अपि चाभिक्षम न विकम्पित अर्हसि धर्माधि युद्ध्यात् श्रेय अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये क्षत्रियो को युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परंतु फिर आखिर में क्या किए? कहे नहीं, ये धर्म नहीं चलेगा, ये धर्म की जो शिक्षा दिया इसको त्याग कर दो, ये तुम्हारा है जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए धर्म को पालन करना उचित नहीं है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वास्तविक ये परधर्म को अपनाने से जीव को समस्त प्रकार की पाप से छुटकारा मिलता है। क्योंकि जब तक ये जो कर्म वासना है जिसको कहते महत पापम, काम एस क्रोध एसम रजगुण समुद्भवम महासन महत पापम, कि जीव के अंदर जो विषय भोग करने की जो इच्छा है ये बहुत बड़ा पाप है। और अर्जुन ने यही बात कहा था कि अहोत बहुत महत पापम कर्तृ व्यवसिता वयम जदराज्य सुख लोभे न हंतु सोजन मध्यता। ये बहुत बड़ा पाप है अपने स्वजन संबंधी को मार करके फिर भोग करना, तो महत पाप है ये इच्छा, अपनी इच्छा को पूर्ति करना। परंतु मनु और शत्रुपा ने जो इच्छा किए वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उसको कामिच्छा नहीं कह सकते, इसलिए उनकी जो इच्छा है इसको परो धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सभी पुंसः परो धर्म जतो भक्ति अधोक्य अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ऐसे अनेक लोगों को पुत्र प्राप्त हुआ है परंतु परिणाम क्या निकला, अंगों को बेन जैसे पुत्र प्राप्त हुआ परंतु वही उनकी परेशानी के कारण हुआ। चित्रकेतु को भी पुत्र प्राप्त हुआ हर्ष शोक, जो पहले थोड़े समय हर्ष दिया फिर वही शोक में बदल गया। इसलिए ऐसे पुत्र प्राप्त करना चाहिए जो कि हमारे साथ यह लोक और परलोक में वो हमारे साथ रहे। ये जो पुत्री का धर्म है इसको हम पर धर्म के रूप में लेना चाहिए। तो इसी प्रकार मनु सतरूपा ने प्रजापति रुचि को अपनी आकुति नामक कन्या प्रदान किए, जैसे यज्ञ भगवान के प्रकट हुआ, यही था पुत्री का धर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसके कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि मनु महाराज भी एक आचार्य हैं, कि उन्होंने ऐसे जब आचरण किए तो क्या दूसरे लोग भी उनको इमिटेशन कर सकते हैं? कहते हाँ, व्यक्ति हर चीज को इमिटेशन नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि महाजन येन गतस्य पंथा। इसमें गतः और पंथा दिया है, रास्ता है और गत जा चुके हैं, जिस मार्गों को अपना करके वो संसार सागर को पार कर चुके हैं, तो इस पथ को अनुसरण करना चाहिए। तो पथ का मतलब है जिन्होंने जहां पर बना हुआ है ना। तो यहां के आचार्य आचरण के द्वारा इस रास्ता को बनाते हैं, लेकिन आचार्य केवल रास्ता बनाते नहीं है, उपदेश भी देते हैं किस प्रकार करना चाहिए। तो ये आचरण से भी यही सीखना चाहिए, क्योंकि धर्म की मर्म जो होता है वो सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए गुरु की अनुसरण करना चाहिए, बा गुरु की चरण को आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो ऐसा नहीं कि आप गुरु के पास चल गए और मंत्र दे दिए तो सब कुछ हो गया, नहीं, उपदीक्षा है, शास्त्र की जो गहराई अर्थ है उसको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो मनु महाराज शत्रुपा ने जो कार्य किए उसमें कोई गलत नहीं है, लौकिक विचार से देखा जाए गलत है, परंतु भक्ति पद को अनुसरण करने वाले के लिए आदर्श है, क्योंकि भगवान के लिए ही सर्वस्व त्याग करना चाहिए, यही है परोधर्म। तो इसलिए मनु ने जो एस्टैब्लिश किए तो साधारण लोग इसकी भ्रांत धारण में पड़ सकते हैं, परंतु भक्ति पद को अनुसरण करने वाले व्यक्ति इसमें कभी फंसेंगे नहीं। जो कहते भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, ये सब तत्व जो रहस्य हैं, ये जब हम भक्तों के साथ चर्चा करते हैं तो ये सब रहस्य को हम बोधयन्ते परस्परम, हम आपस में समझते हैं क्या है, इसलिए कोई गलत नहीं। यस प्रभु जी, यही जीव के लिए ही श्रेय होता है, आत्म कल्याण करने वाला होता है उपदेश। बहुत अच्छा, धन्यवाद। इसलिए धर्म की जो शिक्षा है हमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो करता नहीं है, हम कैसे उसको सुने। तो महाराज भी कहते हैं कि यदि हीरा यदि गटर में पड़ा है तो ये स्थान नहीं देखना चाहिए कि कहां पर पड़ा है, पर हीरा को मूल्य को समझने वाला व्यक्ति वो गटर से जाकर के उस हीरा को उठा सकता है। इसलिए जो उपदेश है उसको समझना चाहिए कि हमारे क्या कल्याण करने वाला है। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि हम लोग ये धर्म को पालन करना चाहिए, यदि पुत्र ना हो तो इस प्रकार करना चाहिए और पर धर्म को आचरण करने के लिए अधिकार चाहिए। सबके अलग अलग अधिकार हैं, तो ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मेरे ये अधिकार हैं। अधिकार को निर्णय करना पड़ेगा अधिकारी के पास जाकर के। ठीक है, और कोई किसी प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जीव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा।